الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وقال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون بزرگان محترم برادران عزیز رمضان المبارک کی آمد ہے اور یہ مہینہ ایسا برکتوں والا رحمتوں والا مہینہ ہے کہ انسان کی سال بھر میں کوئی کوتاہی انسان سے اگر ہو جائے کوئی تکلیف انسان کو اگر پیش آ جائے اللہ تعالیٰ اس آدمی کی مغفرتیں رحمتیں اس مہینے میں پڑھتا ہے. یوں تو سارے سال اللہ تعالیٰ کی مغفرتوں کا مہینہ رحمتوں کا وقت ہے, رحمتوں کے مہینے, لیکن اس وقت میں اس مہینے میں اللہ کی رحمت بہت زیادہ متوجہ ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ بے تحاشا مغفرتیں فرماتے ہیں, بے تحاشا اللہ تعالیٰ اپنی رحمت نازل فرماتے ہیں. حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ہر نیک عمل کا ثواب اس مہینے میں 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک بڑھا دیا جائے گا. 700 گنا تک. اور بات پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مغفرت کا وعدہ, مغفرتیں. یہ 3 عشرے ہیں, عشرہ رحمت, عشرہ مغفرت, عشرہ عتق من النار. پہلا عشرہ رحمت کا, دوسرا مغفرت کا, اور تیسرا جہنم سے خلاصی کا, جہنم سے چھٹکارے کا. رمضان شروع ہو رہا ہے, ہمیں ابھی سے اپنا ذہن بنا کر رکھنا ہے کہ ہمیں رمضان میں کرنا کیا ہے. یعنی سوچنے میں اور ارادہ کرنے میں ہی پتا چلا کہ آدھا رمضان نکل گیا. یہ تو ایک ایک لمحہ قیمتی ہے. اپنی آخرت کو سنوارنے کا مہینہ ہے, اپنے ماضی کے گناہوں کے بخشوانے کا مہینہ ہے, اللہ کی رحمتیں حاصل کرنے کا مہینہ ہے, اپنے آپ کو دوزخ سے چھٹکارا دلانے کا مہینہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بد دعا نہیں دیتے, آپ نے بد دعا دی اس انسان کو جس کو رمضان کا مہینہ ملا اور اس نے اپنی مغفرت نہیں کروائی. رغیما, فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ رغیما انف رجل دخل علیہ رمضان ثم انسلخ قبل ان یغفر له او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم, کہ خاک آلود ہو جائے اس انسان کی ناک, یعنی تباہ و برباد ہو جائے وہ انسان, دخل علیہ رمضان جس کے اوپر رمضان کا مہینہ آیا, رمضان کا مہینہ اس کو ملا, ثم انسلخ اور پھر رمضان کا مہینہ چلا گیا, ختم ہو گیا, قبل ان یغفر اللہ اس کی مغفرت سے پہلے مغفرت ہی نہیں کروانی تمہیں. पूरा महीना आया गुजर भी गया और हमारे मामूलात में कोई फर्क अगर नहीं पड़ा, वही मामूल जो रमजान से पहले के थे वही मामूल रमजान के हैं, तो भाई अल्लाह से पनाह मांगे ऐसी बात से। रमजान के अंदर ये भी सबसे अहम तरीन चीज तो फराइज है। पहला फर्ज तो रोजा है जिसके लिए रमजान को फर्ज किया गया, और दूसरा फर्ज तो है पूरे साल का, वो है नमाज है, वो तो है मुतय्यन फर्ज। सबसे बड़ा सवाब की चीज फराइज को अपने वक्त पर अदा करना, सबसे बड़ा सवाब फराइज को वक्त पर अदा करना, सबसे ज्यादा जरूरी सबसे ज्यादा सवाब की चीज फर्ज को अदा करना वक्त के ऊपर। तो नमाजें उसका वो तो है ही 12 महीने का फर्ज, रोजाना का फर्ज, उसमें इतना एहतमाम करें कि जमात के साथ नमाज का एहतमाम हो, तकबीर उला के साथ नमाज का एहतमाम हो, क्योंकि सबसे ज्यादा अजर सवाब की चीज फर्ज को अपने वक्त पर अदा करना है। इसलिए नमाजें तो हम पढ़ते हैं, लेकिन नमाजों को जमात के साथ एहतमाम के साथ पढ़ें, मिसवाक करके करें, और जितना हम सवाब उसके अंदर ले सकते हैं वो ले। दूसरा फर्ज रोजा है, वो तो रोजा है ही फर्ज रमजान का, जिसके लिए रमजान मुबारक आया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कोई इंसान अगर बगैर उज़्र के रोजा छोड़ दे, हमारे यहां बहुत सारे लोग रोजा रखते नहीं और बस जहन में कि भाई रोजा गर्मी बहुत है रोजा नहीं रखा। याद रखिए ये आदत जो है ना, ये इंसान को पड़ती आदत होती है, रोजा रखना चाहे अल्लाह की नुसरत आती है उस इंसान, मदद आती है अल्लाह की उसको। हदीस शरीफ में ये भी फरमाया कि कोई इंसान अगर बिला वजह रोजा छोड़ता है तो सारी जिंदगी भी रोजे रखता रहे बाद में रमजान के बाद, लेकिन उसका सवाब नहीं पा सकता, उसकी कमी नहीं पूरी कर सकता जो उसने फर्ज रोजा छोड़ा। इसलिए रोजे का एहतमाम जरूरी है। रोजे का एहतमाम क्या है? सबसे पहले एहतमाम रोजे का यह है कि रोजे के मसाइल मालूम करें। मसाइल की किताबें हमारे यहां से मिलती भी है, मुफ्त भी मिलेंगी इंशाल्लाह, वो आप मंगवाए, नहीं तो जितने कैलेंडर दारुल की जो कैलेंडर छपे हुए हैं जरूरी जरूरी मसले उसके ऊपर भी आ जाते हैं, और मसाइल आप निकाल लें, मालूम कर लें, मुफ्ती साहब से पता कर लें जो जरूरी मसाइल है वो क्या। मसलन ये हमें पता यकीन हो कि कितने बजे रोजा खुलेगा कितने बजे रोजा बंद होगा, पहली बात है। हमारे यहां बहुत बड़ा तबका सहरी गलत वक्त के ऊपर खत्म करता है, यानी लोग कैलेंडर तो देखते नहीं है, मस्जिद की अजान का इंतजार करते हैं कि मस्जिद में अजान कब होगी तो सहरी बंद करेंगे। याद रखिए सहरी बंद होने का ताल्लुक अजान से नहीं है, या रोजा खुलने का ताल्लुक अजान से नहीं है, वो उस वक्त से है जो वक्त सहरी खत्म होने का, शुरू होने का, रोजे के सहरी का खत्म होने का और इफ्तार होने का वक्त मुतय्यन लिखा हुआ। आप अपनी घड़ियों को मिलाकर रखें और कैलेंडर को देखकर रखें, जितने मिनट पर वो सहरी खत्म हो रही है इससे एक दो मिनट पहले सहरी छोड़ दें। हमारे यहाँ बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं कि जितनी देर तक नमाज अजान होती रहती है सहरी की फजर की, उतनी देर तक खाते पीते रहते हैं, कभी तो अजान चल रही है, अभी तो अजान चल रही है, रोजा खत्म नहीं होता ऐसा, इस तरह रोजा अदा नहीं होता। अगर वो सहरी का वक्त खत्म हो चुका, सहरी का वक्त खत्म होने पर अजान शुरू होती है, फिर अजान तो चलती है। इसी तरह इफ्तार के वक्त की भी घड़ियां मिलाकर रखें, आप किसी और चीज पर भरोसा ना करें, अपना पूरा एतमाद करके रखें कि कितने बजे इफ्तार होगा, ताकि एक दो मिनट जल्दी इफ्तार ना हो जाए आपका, पहली बात तो ये। इसी तरह जो रोजे के फराइज हैं, रोजे की जो चीजें हैं, किन चीजों से रोजा टूट जाता है, किन चीजों से रोजा मकरूह हो जाता है, ये मसले हमें पता होने चाहिए ताकि हमारा फर्ज सही तरीके से अदा हो सके। दूसरी बात यह है कि रमजानुल मुबारक में हमें रोजे के अलावा क्या क्या उम्र अंजाम देने, रोजा तो एहतमाम से है, घर वालों को भी ताकीद करें और एहतमाम करें इस बात का कि हमारा रोजा बिल्कुल सही वक्त पर शुरू हो, सही वक्त पर खत्म हो और हम रोजे के मसाइल से भी वाकिफ हो, कहीं कोई शक पड़ जाए फौरन अपने किसी आलिम दीन से, मुफ्ती से मसला मालूम करें ताकि रोजा उसकी वजह से खराब ना हो। फर्ज के बाद और नमाजों के बाद एहतमाम करें तिलावत कलाम पाक का। सबसे ज्यादा अहम तरीन सवाब, अहम तरीन इबादत फर्ज के बाद नफली नमाजों में वो तिलावत कलाम पाक की कसरत है। तिलावत कलाम पाक एक हद पर अल्लाह ताला 10 नेकियां अता फरमाते हैं और रमजान मुबारक में हर नेकी 10 गुना से लेकर 700 गुना तक बढ़ा दी जाती है। तो अंदाजा कीजिए कि एक हर्फ हमने पढ़ा, अलिफ लाम मीम हमने पढ़ा, 30 नेकियां मिली। जब रमजान में पढ़ा तो 30 को आप मल्टीप्लाई कर दें किससे, कम से कम 10 गुना से, 10 गुना से लेकर 700 गुना तक अल्लाह ताला सवाब अता फरमाने वाले हैं। कितना बड़ा नाम है आमाल में इंसान के सवाब जाता है। इसलिए तिलावत कलाम पाक बहुत कसरत के साथ करें, अपने दुनिया के जो काम धंधे हैं उनको मुख्तसर करें, उनको थोड़ा करें, जो जरूरी जरूरी काम है वो तो अंजाम दें, बाकी वक्त नमाजों में, जिक्र में, तिलावत में और दुआएं मांगने के अंदर आप लगाएं। तिलावत कलाम पाक अफजल जिक्र फरमाया, जिक्र में अफजल तरीन चीज तिलावत कलाम पाक। इसी तरह तहज्जुद की नमाज नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी कज़ा नहीं फरमाते थे, अल्लाह ताला हम सबको तौफीक अता फरमाए। तहज्जुद की नमाज नफली नमाजों में सबसे ज्यादा अफजल तरीन इबादत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसकी हमेशा पाबंदी फरमाते थे। हम सहरी में उठते हैं, थोड़ी देर पहले उठकर तहज्जुद की नमाज पढ़े, अल्लाह से दुआ मांगने का वक्त है, खूब अल्लाह ताला से दुआएं मांगे। और अगर डर हो कि आंख नहीं खुलेगी या ऐसे वक्त में खुलेगी कि तहज्जुद का वक्त नहीं होगा तो तहज्जुद की नमाज पढ़कर लेट जाए, तहज्जुद की नमाज पढ़कर भी लेट सकते हैं। इसी तरह मगरिब के बाद अवाबीन की नमाज, इशराक की नमाज, चाश्त की नमाज, ये नमाजें अगर वक्त हो जरूर पढ़ें, अल्लाह ताला इसका बहुत अजर सवाब अता फरमाता है। दुआओं की कसरत करें, दुआएं अल्लाह से मांगें, खास तौर पे दो वक्त दुआओं के बड़े कबूलियत के वक्त होते हैं, एक वक्त तहज्जुद का और एक वक्त इफ्तार से पहले का। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लिस्साइमि फरहतान, फरहतुन इंद फित्री व फरहतुन इंद लिकाई रब्बी औ कमा قال सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि रोजेदार को दो खुशियां नसीब होती हैं, एक इफ्तार के वक्त सारा दिन भूखा प्यासा रहने के बाद जब आदमी वो इफ्तार करता है तो जो उसको एक खुशी मिलती है, जो ताजगी उसको सब उसको नसीब होती है, और दूसरा उस वक्त जिस वक्त अल्लाह ताला से वो रोजेदार की मुलाकात होगी, उस वक्त उसको पता चलेगा कि दुनिया में जो मैं रोजे रखता था, कि थोड़ी बहुत मैंने मुशक्कत झेली थी, वो अल्लाह की बारगाह में क्या मकाम रखती है, क्या ऊंचा मकाम है। जन्नत के जो दरवाजे हैं उनमें से एक दरवाजा बाबुर रैयान सिर्फ रोजेदारों के लिए अल्लाह ने मखसूस किया, उससे सिर्फ वही दाखिल होगा जो दुनिया में रोजेदार था। उसमें जब दरवाजे में दाखिल हो जाएंगे दरवाजा बंद हो जाएगा, रोजेदार के अलावा उस दरवाजे से कोई अंदर नहीं आएगा। ये मामूली चीज नहीं है रमजान का रोजा, ये रमजान का रोजा ये बहुत अजीमुशान चीज है। हमें और आपको अंदाजा इसलिए नहीं होता कि हमने पता नहीं है, हमने देखा नहीं है उसका इकराम क्या। इसलिए नफली इबादतों में तिलावत कलाम पाक, नवाफिल की कसरत और दुआ, दुआओं का अहतमाम करें। दो वक्त दुआओं का अर्ज कर रहा था, एक इफ्तार के वक्त और एक तहज्जुद के वक्त, ये ज्यादा कबूलियत का वक्त है, बाकी जिस वक्त दिल चाहे आप दुआएं करें। हमारे यहाँ जो घर की खवातीन होती है वो खवातीन अपने बच्चों के लिए, अपने घर वालों के लिए, मर्दों के लिए खाने पकाने का तमाम करती हैं। उनका बड़ा एहसान है कि सहरी के वक्त हमें खाना बनाकर देना, इतने पहले से उठना, फिर इफ्तार के वक्त गर्मियों के जमाने में चूल्हों पे काम करना, आग पे काम करना और चीजें बनाना, ये उनका हमारे ऊपर एहसान है। लेकिन हम अपनी खवातीन को इस बात की तालीम दें, तरगीब दें कि हमारी खवातीन का वो दुआओं का वक्त, वो खाने पकाने की चीजों में सब होता है। अगर वो भी बड़े सवाब की बात है, लेकिन ये काम थोड़ा सा पहले भी हो सकता है, तो क्यों ना दोनों सवाबों को हासिल करें हमारे घर की खवातीन। अपने घर की औरतों को फरमाएं कि असर से पहले जो बनाना है बना लें, बाकी असर से मगरिब का वक्त ये बड़ी ही कबूलियत है, दुआ का, अल्लाह ताला से जिक्र का, तिलावत का एक अजीब गरीब वक्त है, वो भी इस वक्त में शामिल हो, वो भी बैठे, वो भी अल्लाह ताला से दुआएं मांगे। दुआओं में दो चीजें जरूरी हैं, एक तो मुनाजात मकबूल पढ़े, मैं हमेशा ये बात करता हूं कि इसका एहतमाम करें मुनाजात मकबूल का, और वो इस तरीके से पढ़ें कि हर रोज की एक मंजिल है, हफ्ते की, जुमे की एक मंजिल, हफ्ते की एक मंजिल, पांच मिनट भी नहीं लगते। कुरान और हदीस की दुआएं हैं, वो सारी दुआएं जो हम और आप सोच भी नहीं सकते, वो अल्लाह ताला ने और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई, वो दुआएं मांगे और हाथ उठाकर दुआएं अल्लाह से मांगे। जितनी दुआएं इंसान करता है, अल्लाह की रहमतें उस इंसान पर नाजिल होती है। देखो मैं एक बात आपसे अर्ज करता हूँ, आपके अब जो बच्चे हैं, अगर हर मामले में आपसे पूछे, आपसे मशवरा करें, आपको उन बच्चों से कितनी मोहब्बत होती है कि देखो मेरे से हर काम पूछ के करता है, जो बात हो मेरे से जिक्र करता है। इंसान की फितरत उस बच्चे की, यूं तो हर औलाद सब बराबर होती है, सबसे इंसान को मोहब्बत होती है, लेकिन जो बच्चों में से, औलाद में से जो ज्यादा माँ बाप से रब्ता रखता है, माँ बाप को कितनी मोहब्बत उससे ज्यादा हो जाती है। ये तो दुनिया के अंदर माँ बच्चों की और वालिद की मिसाल है, माँ बाप की मिसाल है। इसी तरह अल्लाह ताला जो इंसान हर वक्त अल्लाह को पुकारता, हर छोटी सी छोटी चीज अल्लाह से मांगता, हदीस शरीफ में फरमाया कि जूते का तस्मा हो वो भी अल्लाह से मांगो, जो इंसान उसको मांगता है अल्लाह ताला उसके ऊपर खास रहमतें फरमाते हैं। तो दुआ की कसरत करें, मांगे दुआ से, रोए अल्लाह से, अल्लाह से अपना ताल्लुक बढ़ाएं, अल्लाह से मांगे, अल्लाह से कलाम करें, अल्लाह से अपना दुआ रोए, अपना ताल्लुक अल्लाह से मजबूत करें। देखिए अल्लाह ताला कैसे इनामात से आपको दुनिया और आखिरत में नवाजते हैं। और तीसरी और आखिरी चीज कि देखिए रमजानुल बारक किस्मत से इंसान को मिलता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुसूले रमजान की दुआएं मांगा करते थे, अल्लाहुम्मा बारिक लना फी रजब व शाबान व बल्लिगना रमजान, ए अल्लाह हमें शाबान, रजब और शाबान के महीने में बरकत अता फरमा, व बल्लिगना रमजान, रमजान तक हमें पहुंचा दीजिए, दुआएं मांगते थे। रमजान में आपकी अजीब गरीब हालत होती थी, हालांकि मासूम अल्लाह के नबी शाफिउल मुज़निबीन, गुनाहगारों की शफाअत कबूल करने वाले, उनकी शफाअत करने वाले, अल्लाह की बारगाह में उनकी शफाअत करेंगे, उनका ये आलम है, तो उम्मत का क्या हाल होगा, उसको क्या करना चाहिए। इसलिए दुआएं मांगे अल्लाह ताला से, और इस रमजान में पहले से तैयार रहें कि देखे जी एक अजीम वक्त शुरू होने वाला है, उसमें हमें गुनाहों को छोड़ना है, रोजे तो रखने, लेकिन गुनाह उसी तरह चलते रहे जो 12 महीने के हराम गुनाह है, तो याद रखिए रोजे के फिर फवाइद और बरकात उस तरह नहीं मिलते। एयर कंडीशन कमरे में चले, एसी चले और खिड़की दरवाजे खुले पड़े हो तो कमरा कभी ठंडा होगा, कभी कमरा ठंडा नहीं हो सकता। दवाएं खाएं और परहेज ना करें, कभी दवा का फायदा मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा, या मिलेगा मामूली सा। रोजा रखे, दुआएं तो कर रहे, सब कुछ कर रहे, लेकिन 12 महीने के हराम गुनाह उसी तरह चल रहे हैं जैसे चलते रहे, तो बताइए रोजे के अखबारात कहां मिलेंगे। झूठ रमजान में नहीं छोड़ा, धोखा नहीं छोड़ा, अपनी दुकानों पर अपने कारोबार में दो नंबर ही करना, थोड़ा बेचना, माल को कम तोलना, गलत क्वालिटी का बताकर, ज्यादा अच्छी क्वालिटी का बताकर गलत क्वालिटी का माल बेचना, ये हराम है, बेबरकतियों की जड़ है, बेबरकतियों की बुनियादें हैं। माल में बेबरकती, जिंदगी में बेबरकतियों की बुनियादें हैं। हम वो गुनाह उसी तरह करते रहे और हम अल्लाह के सामने दुआ भी मांगे तो बताइए किस चीज की दुआ मांगे। इसलिए हर आदमी जानता है, कोई आदमी ऐसा नहीं है मुतसबीर जिसको ये पता ना हो कि मेरे और हमारे गुनाह क्या है। मासूम हम में से कोई नहीं है, हम सबसे गुनाह होते हैं, हम सबसे गलतियां होती है, अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मासूम है, बाकी कोई मासूम नहीं। लिहाजा जब तक हम इसका एहतमाम नहीं करेंगे कि गुनाहों में हम अपनी मासियतों को छोड़ें, अपने गुनाहों को छोड़ें और जितने मुनकरात हैं उनकी फिक्र करें, उनको छोड़ने की फिक्र करें। रमजान मुबारक में मौसीकी सुनना, फिल्में देखना और दूसरे गुनाह के काम करना वैसे भी हराम है, रमजान में इनके गुनाह और बढ़ जाते हैं। टीवी के ऊपर ये रमजान के प्रोग्राम मत देखिए जो अदाकार गुलूकार आपको दीन सिखाने बैठे हैं। खुदा अपने आप को बचाएं इन वक्तों से, इन चीजों से, ये तबाही और बर्बादी है और कुछ भी नहीं है। अपनी फिक्र करें कि हम क्या करने बैठे हैं, हम कौन से गुनाह करते हैं, सबको पता है हम कौन से गुनाह करते हैं, लेकिन हम गाफिल बैठे हुए, हम छोड़ना नहीं चाहते गुनाह। अल्लाह ताला से दुआ करें कि या अल्लाह रमजान का महीना है और रमजान के महीने में भी और वैसे भी अल्लाह की तरफ से वादा है कि कोई इंसान अगर हमारे रास्ते में कोशिश करेगा, मन जहाद पीना लेना हम अल्लाह से बोलना, कोई इंसान अगर हमारे रास्ते में कोशिशें करता है हम उसके लिए रास्तों को खोलते हैं। कोई इंसान इरादा करे आज से झूठ भी बोलूंगा, आज से हलाल कमाने की फिक्र करूंगा, कारोबार में कोई मैं दो नंबर ही काम नहीं करूंगा, गलत काम नहीं करूंगा, किसी से गलत बयानी नहीं करूंगा, किसी को कम तोड़ कर नहीं दूंगा, किसी को गलत बात बताकर नहीं बेचूंगा। आप कोशिश कीजिए, रिजक देने वाला अल्लाह है, कभी अल्लाह ताला इस वजह से आपको नहीं तो आजमाइश में डालेंगे कि आपने सच बोला था, आपने धोखा देना छोड़ा था, इस वजह से कभी आपको तकलीफ नहीं आएगी बल्कि बरकतें नाज़िल होंगी। इसलिए रमजान की खासियत यह है कि हम हलाल कमाएं, इफ्तार हलाल पैसे से करें, यह ना हो कि इफ्तार सारा दिन की मेहनत करें और हमारा पैसा हलाल ना हो। हदीस शरीफ में फरमाया बाद लोग हाथ उठा उठा कर यूं दुआएं मांगते यूं और कहते हैं कि या रब या रब या रब, अल्लाह ताला फरमाते हैं अन्ना उस्तजाबु लहू, कहां से उनकी मैं दुआओं को कबूल करूंगा, अक्लुहु हरामुन मालुहु हरामुन शुर्बुहु हराम, खाना उनका हराम, माल उनका हराम, पीना उनका हराम, लिबास उनका हराम, कहां से दुआएं कबूल होंगी। आमदनी रिश्वत से भरी हुई, सूद से भरी हुई, झूठ से भरी हुई, धोखों से भरी हुई, और आदमी ये चाहे कि मगफिरत हो जाए उसकी, अल्लाह अकबर, कैसे होगा। इसलिए भाइयों एक तरफ नेकियों का हुसूल है और दूसरी तरफ गुनाहों से बचना है, इन दो चीजों का एहतमाम के साथ हमें रमजान चलाना है। जहां गुनाह हो मासूम कोई नहीं है हम में से, जहां गुनाह हो अल्लाह से तौबा मांगे, अल्लाह से माफी मांगे, अल्लाह से मगफरत मांगे कि या अल्लाह ये गुनाह फिर होगे माफ फरमा दी। अल्लाह ताला माफ है, अल्लाह ताला का वादा है कि कोई इंसान मेरे से तौबा मांगेगा मैं उसकी तौबा जरूर कबूल करूंगा। मांगो तौबा, अत्ताइबु मिनज़्ज़म्बि कमल्ला ज़म्बला औ कमा क़ाला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, गुनाहों से तौबा करने वाला इंसान ऐसा है जैसा उसने गुनाह किया ही नहीं था। अल्लाह से दुआ मांगे मेरे दादा हजरत मुफ्ती मोहम्मद शफी साहब रहमतुल्लाह अलैह दारुल कराची के बानी, वो फरमाया करते थे जब रमजान मुबारक शुरू हो अल्लाह की बारगाह में बैठकर दो रकात सलातुल हाजत पढ़ लो और ये दुआ मांगो कि या अल्लाह इतना अजीम महीना शुरू हो रहा है, अहम फरीजा है, मैं दुआ मांगता हूँ कि या अल्लाह ये रमजान मेरा खैरियत के साथ गुजरवा दीजिए, अपनी बारगाह में कबूलियत के साथ गुजरवा दीजिए और सुकून वाला रमजान गुजरवा दीजिए, अपने जिक्र से अपनी इबादतों से बिल्कुल बेहतरीन आरास्ता रमजान गुजरवा दीजिए। ये दुआ करें रमजान के शुरू में और रमजान इरादे के साथ तहय्यक और पुख्ता इरादे के साथ शुरू करें। अल्लाह रब्बुल इज्जत इस इरादे के साथ इस रमजान में हमें गुनाहों को छोड़ना और अपने नामे अमाल को बढ़ाना है। नफली इबादतों का, तिलावत का एहतमाम करें, फराइज का एहतमाम करें। अल्लाह ताला हम सबके रमजान को कबूल फरमाए और हम सबके लिए मगफरत वाला, बरकत वाला, रहमत वाला रमजान इसको बनाए। वाखिर दुआ अलहम्दुलिल्लाह। www.dasquran.com